Was man dann उदाही है यशोदा च महाभागा यशोदा बड़ी भाग्यवान स्त्री यशोदा च महाभागा भाग्यवान यशोदा पपो यश्यास्तनम हरि सुखदेव गोस्वामी कहे इनके स्तन का पान दुग्ध पान इनके गोद में भगवान लेट जाते हैं भगवान जो जगन्नाथ है लोकनाथ त्रिलोकीनाथ है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है मम सर्वदेव देवः वे सब कुछ है ऐसे ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है तो ऐसे ऐसे भगवान यशोदा के गोद में यशोदा यशोदा च महाभागा पपौ पीते रहे पीते थे अब भी पीते हैं नित्य लीला दूध गाय के दूध से यशोदा मैया का के स्तन का दूध इसका अपने हाथों में हाथों से पकड़ भी लेते और उसका पान करते हैं और जब कन्हैया दुग्ध पान कर रहा है तो उस कन्हैया के मुखमंडल का वो दर्शन कर दी कन्हैया कितने दूर रहते उनसे छः इंच या एक फुट दूर या के गोद में ही तो है यशोदा निहार थी अपने बालक को कभी चूमती है नन्ना कन्हैया है तो कुछ दास अभी अभी निकल रहे हैं तो उसको हर्ष हो रहा है कृष्ण कन्हैया के मुख के कुछ अभी अभी जो दास उग रहे हैं उनको देख के तो यशोदा यशोमती नंदन उनको कृष्ण कृष्ण कहने के बजाय उनके कई नाम है विष्णु सहस्र नाम भी है लेकिन यशोदा नंदन कहने से कृष्ण और भी प्रसन्न हो जाते हैं मैं किसका नंदन किसका पुत्र हूं यशोदा नंदन मैं यशोदा का पुत्र हूं यशोदा का पुत्र या वो सची नंदन नंद नंदन किसी भक्त के संबंध में या फिर राधा बल्लभ किसी भक्त का नाम जुड़ा हो फिर उनका नाम का संबंध भक्त के साथ कहने से फिर कृष्ण और भी प्रसन्न हो जाते हैं भक्ताना मानवर्धन कि भगवान अपने भक्तों की ख्याति का वर्धन भी करना चाहते हैं भक्ताना मान वर्धना, मान सम्मान करते हैं भगवान, अपने भक्तों का बहुत सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। और ऐसे भक्तों का अपने हृदय प्रांगण में रखते हैं। साधवो हृदयम मह्यम, साधु मेरे हृदय है भगवान कहते। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, साधवो हृदयम मह्यम, साधु साधु हृदय, साधु भगवान के हृदय में, साधु नाम हृदयम त्वहम, और मैं साधु का हृदय हूँ, या साधु मेरे हृदय में है, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। घनिष्ठ संबंध है भगवान और भक्तों का। तो यह यशोदा साध्वी है, पुरुष होता है साधु, स्त्री फिर साध्वी कहते हैं, साध्वी। और साधुओं में विशेष स्थान है यशोदा का। साधु तो वैसे अनेक भी हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन यशोदा, यशोदा मैया कितनी यशोदा है, यशोदा कितनी संख्या में यशोदा मैया है, बस एक ही है सारे संसार में, सारे सृष्टि में यशोदा जो साध्वी है, एक ही है। वैसे जरूर और माताएं भी ब्रज की, जो बुजुर्ग गोपियां है, उनका भी स्नेह है भगवान के प्रति, वात्सल्य है। और उनकी भी अभिलाषा सदैव ये रहती कि क्या कन्हैया जैसा बालक हमको भी कभी प्राप्त हो सकता है। फिर वैसे भगवान एक बार बन गए, वैसे ब्रज की सारी गोपियां चाहती थी कि पुत्र हो तो कन्हैया जैसा, तो सभी बुजुर्ग गोपियों के लाल नंदन बने कृष्ण, एक साल के लिए, एक वर्ष के लिए। और ये तब हुआ जब ब्रह्म विमोहन लीला नामक लीला वृंदावन में संपन्न हुई। ब्रह्म विमोहन, तो ब्रह्मा आए और भगवान के मित्रों की चोरी किए, वैसे बछड़ों की भी चोरी किए, मित्रों की भी चोरी किए। भगवान अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे यमुना के तट पर, ये सब हुआ था। अघासुर, अघासुर वध के उपरांत, तो अघासुर का वध करते करते वैसे कुछ समय भी बीत गया, तो सभी ने घड़ी की ओर देखा था, आए इट्स लंच टाइम, तो कहाँ ले सकते लंच, तो थोड़ा ही खोजने पर, इधर उधर देखने पर, यमुना के तट पर ये स्थल बड़ा रमणीय है, या हरियाली भी है, हम बैठने के लिए कुछ अलग से आसन की आवश्यकता नहीं, मुलायम घास है, और बछड़े भी चर सकते हैं बगल में, हम जब भोजन करेंगे तो बछड़े भी अपना लंच ग्रास घास खाएंगे। तो वह और सारा जो सौंदर्य ब्रज का, कई प्रकार के वृक्ष और रंग बिरंगे फूल खिले हैं, पक्षी सर्वत्र कलरव कर रहे हैं, मतलब म्यूजिक भी है, मतलब म्यूजिक नेचुरल संगीत है, पक्षी गा रहे हैं, भ्रमर भी अपना गान कर रहे हैं, इट्स अ म्यूजिक। कोयल है कू, उससे भी सारा वातावरण, मोर अपने, तो हर पक्षी अपने अपने ढंग का वो भी हर्ष प्रकट कर रहे हैं उसी क्षेत्र में जहाँ वे रहते वो पक्षी, तो वही आ गए कन्हैया, हाँ यही भोजन करो, हम भी प्रसन्न होंगे आपको देख के, तो हम थोड़ा संगीतमय बनाते ये सारा वातावरण, हम भी गा लेते हैं, तो पक्षी गा रहे हैं और शीतल पवन भी बह रही है, सावन का महीना, और फिर पवन करे शोर, ये कौन सा महीना चल रहा है, भाद्रपद सावन, हाँ कहता हूँ उसे, भाद्रपद मास में भगवान का जन्म का महीना है, चले भाद्रपद पवित्र मास, तो हवा भी बह रही है लेकिन तूफान जैसी नहीं, मंद मंद हवा बह रही है, और हवा सुगंधित है, सर्वत्र सुगंधित पुष्प है, तो हवा में जो गंध है या पुष्प जहाँ खिले है वहाँ से हवा जब बहती है तो क्या होता है, सुगंध को लेके आगे बढ़ती है वो हवा, कई सारे कुंड है, तालाब है, सरोवर है, जमुना तो है ही, उनका शीतल जल है, तो वहाँ आगे जो तरंगे है वो जल की, उनको थोड़ा स्पर्श करती हुई, थोड़ी टकराती हुई हवा जब बहती है तो हवा भी शीतल होके सुगंधित होके मंद मंद बह रही है, लगा एसी राइट टेम्परेचर, परफेक्ट टेम्परेचर, भगवान के प्रसन्नता के लिए सब सारा ब्रज ही, सारा चर अचर वहां भगवान को प्रसन्न करता रहता है, वाह चिंतामणि वृंदावन को कह, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, चिंतामणि वृंदावन चिंतामणि, चिंता चिंतामणि का बना हुआ चिंतामणि, तो चिंतामणि के संपर्क में जो भी आता है उसको स्पर्श करता है और फिर चिंतन करता है, कोई सोचता है तो इच्छा की पूर्ति कर देता है वो चिंतामणि, चिंतामणि नाम का मणि, वो पारसमणि भी होता है, पारसमणि अलग, तो पारसमणि लोहे को स्पर्श करो, ये लोहा है, ये लोहा है, आपकी साइकिल भी लोहे की है तो पारसमणि को स्पर्श करो, क्या हुआ आपकी साइकिल गोल्डन, गोल्डन बाइसिकल, तो जो जो लोहा है उसको ये पारसमणि इसको सोना बनाता है, तो ये चिंतामणि और भी अद्भुत, उसको स्पर्श करो और चिंतन करो उसकी इच्छा की पूर्ति करता है, और फिर चिंतामणि धाम भी है, और फिर वहाँ कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, और कल्प वृक्ष भी है, वांछाकल्पतरु भेष्य, वांछाकल्पतरु, वांछा जो इच्छा है उसकी पूर्ति करने वाले वृंदावन के वांछाकल्पतरु। आप उसे भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष है वहां, केले का भी है, चीकू का भी है, आम का भी है, अमरूद का भी है, अलग अलग सारे। लेकिन आप केले के पेड़ के पास जाकर अगर आपकी इच्छा हुई कि आम खाया जाए, आम मिले, तो केले का पेड़ आपको आम भी दे सकता है। और ये ना कि मैंगो इज नॉट अ मैंगो सीजन, ऐसा कभी नहीं होगा। हर सीजन मैंगो सीजन का हो, हर फल का सीजन बन जाता है। ऐसा है, ऐसा है भगवान का, भगवान का धाम। आप ऐसे स्थान पर नहीं जाना पसंद करोगे? जीना या मरना या नोएडा छोड़ के जाना कहा, सब विचार लोगों का। तो ये जो वृंदावन का जो वर्णन है सुखदेव गोस्वामी किए है, उनका आंखों देखा वर्णन या दिव्य चक्षु से देखा हुआ वर्णन वृंदावन धाम का और लीलाओं का भी धाम का, तो कई कई पर कहा कि ये वृंदावन धाम की ये एडवर्टीजमेंट है या दिस इज विज्ञापन। खूब चलता रहना आप, यहाँ जाओ, नेपाल जाओ, पेरिस जाओ, द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, ये वहाँ जाओ, हवाई जाओ, हवाई जाओ, तो फिर यहाँ कहेंगे हवाई जाओ, हवाई पहुँचोगे तो फिर कैलिफोर्निया जाओ, लॉस एंजलिस जाओ, वहाँ पहुँच गए तो न्यूयॉर्क जाओ, फिर शिमला जाओ। तो ऐसे हम लोग भ्रमण तो कर ही रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान से, और ये तो संसार के चक्कर में ऐसे बुरी तरह फंसे हुए हैं। और इस संसार के जो माया का जो प्रचार, तो वृंदावन धाम का जो ये जाहिरात, ये जो विज्ञापन, तो मित्रों के साथ भगवान बैठे भोजन करने के लिए, कृष्ण मध्य में बैठे हैं, सारे मित्र बैठ गए, चारों ओर बैठे कृष्ण को मध्य में रखते हुए। वैसे उस दिन बलराम नहीं आए थे, तो कुछ जब बलराम साथ में नहीं होते तो कृष्ण कुछ समस्या में पड़ जाते, कुछ समस्या खड़ी होती है, ऐसा कई बार का अनुभव रहा। तो इस दिन भी वो समस्या, तो एक तो समस्या बाद में कहेंगे। पहले तो जब भोजन के लिए बैठे तो सभी मित्र चाहते हैं कि हम कृष्ण के सामने बैठना चाहते हैं, पीछे कोई नहीं बैठना चाहता। बैठे तो है, कोई सामने है, कोई दाहिने बगल, भाई बगल में, पीछे बैठे तो है, लेकिन ना ना ना, मैं फ्रंट में बैठना चाहता, सामने बैठना चाहता। तो ये सब की आंतरिक इच्छा को जानते हुए फिर भगवान ऐसी कुछ विशेष व्यवस्था करते हैं ताकि सभी अनुभव करें। सभी तो बैठे हैं सभी दिशाओं में, लेकिन भगवान ऐसी कुछ व्यवस्था करते हैं ताकि सभी अनुभव करें कि हम उनके सामने ही तो बैठ के भोजन कर रहे हैं। तब वह फिर भगवान स्वयं ही गोलाकार घूमते हैं, थाली भी तो है सामने, उनका भोजन भी तो करना है, लेकिन भगवान ये लगा विद्युत लगा लाइटनिंग, किसी को पता भी नहीं चलता है, लगता है भगवान स्थिर है। उंगली जब या कोई कहते मशाल कहते ऐसा तेजी से घुमाएंगे तो क्या अनुभव होगा, गोलाकार वो ज्योति सर्वत्र है तो एक स्थान पर, लेकिन ऐसे घुमाएंगे तो कि कंप्लीट सर्कल है, सर्वत्र है वो ज्योति, तो भगवान तो उससे भी अधिक तेजी से जब घूमते हैं तो सभी अनुभव करते हैं, सामने वाले भी और बगल वाले भी पीछे वाले भी, कि हमारे सामने ही कन्हैया है। जैसे कृष्ण की रास क्रीड़ा में है ना, रास क्रीड़ा में या राधा कृष्ण रास क्रीड़ा, गोपी कृष्ण रास क्रीड़ा, तो जितने दो थियोरीज है, दो प्रकार से इसको समझाते हैं, एक तो जितनी जितनी गोपियां है उतने कृष्ण हुए, और रास क्रीड़ा में कुछ 3 करोड़ गोपियां तो आ ही जाती है एक डांस कंसर्ट होगी तो कितनी गोपियां आ गई, 3 करोड़। तो फिर 3 करोड़ कृष्ण भी हुए, और तो एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण नृत्य हो रहा है। और दूसरा ये है कि कृष्ण कुछ अपना विस्तार वगैरह नहीं करते, एक ही कृष्ण इतने तेजी से एक गोपी से दूसरे गोपी और तीसरी फिर हजारवीं और 100,000 जो है, या इतने तेजी से जाते हैं कुछ, एंड देन बैक टू नंबर 1। उन्होंने 3 करोड़ कवर भी कर लिया, 3 करोड़ 3 करोड़ गोपियों के साथ वे नृत्य किए जैसे भी हाथ का हो रहा है, और फिर आ गए नंबर 1 जहां से उन्होंने प्रारंभ किया था विस्तार या ब्राह्मण। जब लंबा रहा है ना, ये स्ट्रीट लाइट्स होती है, कभी कभी रास्ता ऐसा सीधा होता है, इफ यू गो टू बेल्जियम, बेल्जियम ऐसा एक देश है, वहां तो गांवों में शहरों में तो लाइट तो होती है, लेकिन इन बिटवीन द सिटीज एंड इन बिटवीन द टाउन्स, यहाँ से मथुरा तक जो जमुना एक्सप्रेस है सारी स्ट्रीट लाइट मिलेगी, आगे भी मिलेगी, फिर कानपुर तक मिलेगी, नागपुर तक मिलेगी, देयर आर स्ट्रीट लाइट्स एवरीवेयर, और वहाँ के रास्ते इतने सीधे होते हैं, अगर 20 किलोमीटर्स स्ट्रेट, तो जब लाइट ऑन होती है ये कोई अनुभव नहीं करता कि ओके ये जल गई, फिर नेक्स्ट वाली जल गई, फिर नेक्स्ट वाली जल, बाद में नेक्स्ट वाली, बाद में होता तो वैसा ही है, एक पोल से दूसरी पोल तक पहुंच गया करंट, तीसरी तक, दसवीं तक, हजारवीं तक, पोल तक, लेकिन अनुभव क्या होता है, कितने के पास बिजली पहुंच गई, 1,000 poles या 100,000 burst. You know, एक से एक के बाद एक ही तो करंट पहुंचता है, लेकिन like a lightning, speed कैसी? Like a lightning. तो भगवान इन लाइटनिंग की तरह है सब जाते हैं, एक गोपी से दूसरी, एक करोड़ क्रॉस हुआ के 2 crores, 3 crores completed. तो पता ही नहीं चलता. सो ओनली कृष्णा एक ही है और गोपी अनेक है और सभी के साथ वो नृत्य कर रहे हैं. तो यह भगवान भोजन कर रहे हैं तो वहां भी आचार्यगण, आचार्य हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य अपने भाषाओं में कमेंट्रीज में ऐसा समझाते हैं. तो भगवान तो अभी भोजन के लिए बैठ गए तो बालकों ने भी अपने अपने घर से जो टिफिन्स लाए हैं तो भगवान को भोग लगाने के लिए उनको कहीं किसी पड़ोस के मंदिर में होकर जाना पड़ता है क्या? वेयर इज द टेम्पल हियर, या कोई विग्रह है, कोई डीटी है, इसका ऑफरिंग करते हैं पहले? तो कन्हैया तो सामने ही बैठे हैं, अपने घर का कुछ भोजन अपने ही हाथों से अपने मित्र को, परम मित्र को, कन्हैया को खिलाते हैं, फिर स्वयं खाते हैं. भुंगते भोजायते चैव, प्रीति प्रीति लक्षणम षड्विधम प्रीति लक्षण, भोजन खाओ और खिलाओ तो ये भी चलता है खूब. एनीवे हम लोग बड़े विस्तार से कह रहे हैं. तो जब भोजन हो रहा था तो बछड़े कुछ बगल में बांध दिए थे, लेकिन कुछ मित्रों का ध्यान गया बछड़ों की ओर, देखा गया बछड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, और भी कोई मित्र उठे. यस ट्रू, हाँ है नहीं कोई बछड़े. तीसरा भी उठा भी, उसने भी कंफर्म किया बछड़े नहीं है. तो सारे बालक बछड़े नहीं है चिंतित हो गए. वे स्वयं ही खोजने के लिए कहीं जाने का विचार कर रहे थे तो कहने नहीं 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 नहीं, नहीं। मित्रों तुम सभी बैठो, मैं खोजता हूँ, मैं लेके आता हूँ बछड़ों को. ऐसा कह के कन्हैया जाते हैं, सर्वत्र खोजते हैं लेकिन बछड़े कहीं नहीं मिले. इवेंट एवरीवेयर, जमुना के तट पर, गोवर्धन के तलहटी में, इतस्ततः सर्वत्र, गोवर्धन के शिखर पर, इस वन में, उस वन में, ताल वन में, मधुबन में, वहाँ कई सारे वन है. नाम तो एक हम लोग लेते हैं वृंदावन कहते हैं, लेकिन मोटे मोटे तो 12 वन ही है. 12 वन, फिर आदि वन है, कोई उपवन है, वन के अंदर दूसरा वन, उसका अंदर दूसरा वन, उसके अंदर दूसरा, ऐसे कई हजारों वन है छोटे मोटे. और वह हर वन में कुछ कोई विविधता है, उसका कोई वैशिष्ट है. अलग अलग सीजन्स भी होते हैं, एक ही साथ एक ही उस द्वादश कानन का ही अलग अलग सीजन्स. कई समर सीजन चल रहा है, कई वर्षा ऋतु चल रहा है, कोई शीतकाल है, तो कई वसंत ऋतु है. ऐसा भी अनुभव संभव. तो सर्वत्र खोजा और बछड़े जब नहीं मिले तो रिपोर्टिंग करने के लिए वही लौटे कन्हैया जहाँ अपने मित्र भोजन कर रहे थे. लेकिन जब वे उस स्थल पर पहुंचे तो देखा मित्र भी नहीं थे वहां. और फिर मित्रों को खोजने लगे, मित्र भी कहीं नहीं मिले। पहले तो बछड़े नहीं मिले, फिर अभी मित्र भी नहीं मिले, और लंच के समय से खोज ही रहे थे, और अभी खोजते 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 सायंकाल का समय हुआ। सायंकाल को संध्या काल घर लौटने का, कन्हैया को भी घर लौटना होता है और सारे मित्रों को भी लौटना होता है। तो लौटने का समय आया तो कन्हैया ने सोचा कि अब मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ। कई सारी इंक्वायरीज हो गए, कहाँ है, कहाँ है मेरा पुत्र, कहाँ है मेरा पुत्र। हर ब्रजवासी मैया पूछेगी, मुझे ही तो पूछेगी, और कौन है नहीं, नहीं तो पूछेगी। फिर मैं क्या जवाब दे सकता हूं। और कितनी दुखी होगी जब उनको पता चलेगा कि उनका बालक आज गया तो सही बछड़े चराने के लिए, लेकिन लौटा नहीं। तो कन्हैया ने सोचा कि अब मुझे कुछ उपाय करना होगा। तो ओके, उपाय करना होगा, ऐसा विचार करते ही विचार आ गया। तो कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया अपने सारे मित्र बन गए। जितने मित्र आए थे उस दिन बछड़े चराने के लिए, उतने मित्र कन्हैया बन गया। ये नहीं कि वो सारे कृष्ण जैसी शक्ल और कृष्ण जैसे काला सावला या पीतांबर वस्त्र, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति अलग अलग, हर मित्र जैसे भी उनकी शक्ल, उनकी कद है, उनका वस्त्र है, उनकी लखोटी है उसकी साइज की, और फिर स्वभाव भी उनकी, उनका आवाज भी वैसा ही। या जितने लोग बैठे हैं, दो चार सौ जितने बैठे हैं, तो हमारे की वॉइस साउंड अलग अलग होती है। हम उसकी आवाज सुनते ही हम पहचान, दिस इज ये धर्मराज है, ये है, ये फलाने वो है, वो फलाने वो है, फलाने, केवल आवाज सुनते। वैसे ही ऐसी व्यवस्था करने वाले भगवान ही है। हम जब बनते हैं तो क्या हम पहले बताए, मेरा वॉइस ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा वॉइस वाला मुझे कंठ बना दो। पहले ये प्रकृति है, भगवान की प्रकृति है, वो सब व्यवस्था करके। तो स्वयं भगवान ही बन गए, सारे मित्र भगवान थे। और केवल मित्र तो हो गए, तो चलो हम मित्र सब लौटते हैं, पूछें कि बछड़े कहाँ है, तो फिर भगवान बछड़े भी बन गए। तो जितने बछड़े थे उतने कन्हैया, उतने कृष्ण। तो फिर लौट गए सब। हर सायंकाल की भांति सब लौट गए, अपने अपने घर भी पहुंच गए। बालक घर में गए, बछड़े गौशाला में गए। और वैसे दूसरी ये भी बात थी कि केवल बुजुर्ग माताएं ही नहीं चाहती थी कि कृष्ण जैसा पुत्र हमें मिले, ऐसी सारी गायें भी चाहती थी गायों का भी वात्सल्य कृष्ण के प्रति, क्या कृष्ण जैसा बछड़ा हमको मिल सकता है? या ये विचार उनका कि हमारा दूध दोहन होता है, फिर यशोदा प्याले में भर के हमारा दूध पिलाती है, लेकिन ऐसा कभी संभव होगा कि कन्हैया गौशाला में आके हमारे थनों से ही वहीं पर दूध पी ले जैसे हमारे बछड़े पीते हैं? ऐसा कन्हैया कभी स्वयं करेंगे? ऐसा विचारों गायों का विचार, गाय भी भक्त है, वहां का ब्रज का सारे भक्त सभी भक्त है, वो वृक्ष भी भक्त है और वो पक्षी भी भक्त है और घास भी भक्त है, इवन आकाश के बादल भी भक्त है। धूप है तो भगवान जा रहे तो बादल भी सोचते हैं कड़ी धूप है, और छाता भी नहीं लाया कन्हैया, तो कन्हैया जहाँ जहाँ जाते हैं आकाश में बादल भी वहाँ वहाँ जाता है नीचे देखते हुए, कहाँ है कन्हैया कहाँ है किसका। ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे हमारा ऐसा अनुभव नहीं है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हमारा इस जगत में इस, लेकिन ऐसा जगत ऐसा हमारी प्रतीक्षा में है भगवान का निज धाम, और कन्हैया भी वैसे हमारी प्रतीक्षा में है, और ऐसे कन्हैया ही फिर आ जाते हैं इस संसार में, संभवामी युगे युगे, और हमको एक प्रकार से आमंत्रित करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी ओर आ जाओ, मामेकम शरणम व्रज माम एव यशसि सत्यम ते त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति, मुझे प्राप्त करोगे। और मैं इतना सुंदर हूँ, ऐसा मेरे सौंदर्य को देखो, मेरे सौंदर्य को देखो। फिर भगवान गीता का उपदेश भी सुनाते हैं, इसको सुनो इसको पढ़ो, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः, तो फिर तो कोई किसी ने पहचाना नहीं किसी को, नो डाउट नो नथिंग, बिजनेस एज यूजुअल कहते वैसा चल रहा है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग गए सभी बछड़े गए, सभी बालक गए, गोचारण लीला हुई, लौटे, इस प्रकार समय बीत रहा था, दिन और वर या महीने बीत रहे थे, लेकिन एक विशेष अनुभव रहा इन सभी माताओं का, क्योंकि कन्हैया दिन ब दिन कुछ अपना अधिक अधिक साक्षात्कार करा रहे थे उन माताओं को कि वे कृष्ण है, योग सामा योग माया समावृता, तो स्वयं भगवान ही अपना भगवत्ता को प्रकाशित कर रहे थे, कुछ अनुभव करा रहे थे उन सभी माताओं को, इसका नतीजा परिणाम ये निकला कि यह पहले जो सोचा करती थी सभी गोपियाँ, बुजुर्ग गोपियाँ, हाँ गोपियों के युवतियाँ भी है तो इसके लिए बुजुर्ग बुजुर्ग कहना पड़ रहा है, बुजुर्ग वयस्क गोपियाँ, यंग गोपीज, उनके साथ भगवान का दूसरे प्रकार का संबंध है, वो है माधुर्य, माधुर्य संबंध, उनके साथ श्रृंगार रस की क्रीड़ा भगवान खेलते हैं गोपियों के साथ, यंग गोपियों के साथ। लेकिन जो बड़ी गोपियाँ हैं उनके साथ भगवान का वात्सल्य, वात्सल्य मतलब वो माता है और कन्हैया उनके लिए पुत्र है, ये भाव। तो पहले वो सोचा करती थी कि ये मेरा पुत्र है और ये यशोदा का पुत्र है, ये इसका फलाने माता का वो पुत्र है, ये अमुक माता का ये बेटा है और तमुक माता का वो बालक है, ऐसा जो पहले का अनुभव। तो वो धीरे धीरे जैसे कई सारे महीने और दिन महीने बीत रहे थे तो ये विचार उनके दिमाग से अब निकलने लगा और निकल भी गया, तो ये अलग है, ये मेरा पुत्र और ये और किसी का पुत्र और ये उसका पुत्र और ये मेरा और ये कन्हैया यशोदा का, ये यशोदा का पुत्र है कन्हैया और ये मेरा पुत्र है सुदामा, या कई सारे उनके भी नाम है, वैसे सभी के नाम है, ये 3 करोड़ गोपियां भी है तो उनके भी नाम है और लाखों ग्वाल बाल बालक जो गोचारण लीला के लिए भगवान के साथ जाते हैं उनके भी नाम है, और कन्हैया के स्वयं के ही नंद गोधन रखवाला, अभी तो यशोमती नंदन की व्याख्या हम कर रहे हैं, वो कह के हमें पूरा एक एक नाम कहे हैं इस गीत में, उसको कुछ कहना था हर नाम के संबंध में, लेकिन वो अभी देखते हैं क्या होता है। पहला एक ही नाम के संबंध में हम कुछ आगे कह रहे हैं। तो हुआ तो कन्हैया की खुद की ओके, तो ब्रजजन पालन असुरकुल नाशन नंद गोधन रखवाला, कृष्ण कैसे हैं, नंद गोधन रखवाले हैं, नंद महाराज का कि गाय नहीं कहा गोधन कहा, जिनका गो ही गाय ही जिनका धन है। और एक समय कौन धनवान है कैसे इसको नापा तोला जाता था, जिसके पास अधिक गाय है वो धनी है, या जिसके पास अधिक खेती है और फिर धान भी है वो धनी है। तो नंद महाराज के पास 9 लाख गाय, तो गाय तो नंद बाबा की है और उनका धन है और उसकी रखवाले कन्हैया है, कन्हैया गायों को चराते हैं। तो हुआ तो ये बुजुर्ग गोपियां चाहती थी कि भगवान, क्या भगवान जैसा पुत्र हमें कभी मिल सकता है, तो फिर इस लीला में ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान ने सभी गोपियों के वे पुत्र बन गए और सभी गायों के बछड़े वे बन गए। और फिर जो बुजुर्ग जो गोप थे, गोप और गोपी पुरुष गोप और स्त्री गोपी स्त्रीलिंग में, और सारा गो से ही संबंध है। पहले तो गाय है, फिर गोप, प मतलब पालक, गोप गोप जो कहते, गोप मतलब गो पालक, गो रक्षक। वैसे कृष्ण ही कृष्ण गोपाल कहते तो कृष्ण का नाम, कृष्ण का स्मरण करते हैं, लेकिन सारे गोपाल है। वृंदावन में कौन रहते हैं? सारे ग्वाले रहते, गोपाल रहते। तो गोपाल पूरा कहने के बजाय गोप ही कहते, गोप, लेकिन गोप मतलब गो गोपाल या गोपालक। फिर गोपाल है या फिर गोकुल है, गोलोक है, सारे गाय का ही नाम है। गोवर्धन है, तो वृंदावन का जो कल्चर है, संस्कृति है, गाय मध्य में है, गाय सेंटर में है। जो कन्हैया को प्यारी भी है, उनकी सेवा भी करते हैं, रखवाली करते हैं। ओके, तो इसी साल में तो जिन जिन गोपों की पुत्रिया थी और अभी उनका विवाह का समय आ गया है, तो फिर घोषणाएं होने लगी। मैरिज के लिए अच्छा सीजन है, आप अपने पुत्रियों के विवाह कर डालो, अपने पुत्रियों के विवाह अभी अभी करो, कल करे सो, आज करे सो, अब करो, डोंट पोस्टपोन। एक विशेष अवसर है, विशेष घड़ी है, विवाह करो विवाह करो विवाह करो। तो सारे ब्रज में सारी नवयुवतियों के विवाह भी हो गए, सारे नवयुवकों के साथ नवयुवतियों के विवाह हो गए। तो सारे नवयुवक कौन थे? कौन थे? हर घर में जो नवयुवक थे वो सारे कृष्ण ही थे। तो किसी के साथ भी विवाह करो, किसी भी युवक के साथ, वो कौन था? कृष्ण थे। किसी भी युवक के साथ सारे कृष्ण थे। तो इन गोपियों को, क्योंकि ब्रज के गोप सोचते थे क्या पति, हमारे पुत्री को पति मिले तो कैसा हो? कृष्ण जैसा। क्या कृष्ण जैसा पति मिल सकता है? फिर गाय सोचती, क्या कृष्ण जैसा बछड़ा हमको मिल सकता है? और गोपियां, बड़ी गोपियां सोच, क्या कृष्ण जैसा पुत्र हमको मिल सकता है? तो ये एक साल का अवधि जो था, ये ब्रह्म विमोहन लीला के कालावधि में सबकी इच्छा की वांछा कल्पतरुभ्यश्च, जो चिंतामणि जो धाम है, जैसा चिंतन किया कर रहे थे तो उसकी पूर्ति हुई। तो फिर ये तो जब मित्र नहीं मिले, बछड़े नहीं मिले, तो हुआ था क्या? ब्रह्मा, ये ब्रह्मा की करतूत थी, ब्रह्मा ने भगवान के बछड़ों को पहले चोरी की और बाद में मित्रों की चोरी की, छिपा के लौट के आए। तो जाने में और फिर लौटने में यहाँ का एक साल बीत गया। अपने ब्रह्मलोक का या स्वर्गलोक का तो कुछ ही क्षणों का, कुछ ही मिनटों का, घंटों की अवधि, लेकिन यहाँ पूरा साल बीत चुका था। तो ब्रह्मा लौट के आए और वो सोच रहे थे कि अब कन्हैया तो अकेला होगा, अब भी खोजता होगा अपने मित्रों को, बछड़ों को, या आई हैव लॉस्ट माय सन, आई हैव लॉस्ट माय कैफ, ऐसे कई पर साइन लगाते होंगे लोग, कई सारे पेड़ों पर उन्हें साइन लगाए होंगे, अखबारों में सारी विज्ञापन देते होंगे, हमारा पुत्र भी फोटोग्राफ देखिए, आई हैव लॉस्ट दिस सन, आई हैव लॉस्ट दिस कैफ, ऐसा सब खोजते होंगे ऐसा, लेकिन वैसा कुछ नहीं अनुभव किया ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने क्या अनुभव किया कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, पूर्ववत सब सब मित्र भी है, बछड़े भी है। तो ब्रह्मा ने सा अरे अरे ये क्या है, अभी तो मैं चोरी करके छिपा के आया हूं, तो क्या कन्हैया ने वो मेरे चोरी का जो माल उनके मित्र और बछड़ों को पुनः यहाँ वो ले आया क्या? तो ब्रह्मा पुनः जाके देखते हैं तो वो तो वहाँ है जहाँ भी छिपाए थे, और फिर वापस आके देखे तो वहाँ भी है, टू सेट्स, एक बछड़ों का सेट वहाँ है, एक यहाँ भी है, बालकों का वहाँ है यहाँ है। तो हुआ तो ये पहला दृश्य कि सब एवरीथिंग इज नॉर्मल, यथावत चल रहा है, पूर्ववत सब लीला संपन्न है, सभी बछड़े है यहाँ, सभी बालक है यहाँ। लेकिन सीन को परिवर्तन किए तो दूसरे सीन में, दूसरे दृश्य में भगवान ऐसा दृश्य देखा ब्रह्मा ने, अपने हंस पर बैठे हुए, हंस वाहन, ब्रह्मा का वाहन हंस है, हर देवता का अलग अलग वाहन, हंस वाहन पर के पीठ पर बैठ के वो देख रहे थे सारा ब्रज का वो दृश्य। तो दूसरे दृश्य में उन्होंने देखा कि यह जितने बछड़े थे, जितने बालक थे, वो सारे चतुर्भुज हुए हैं, सब चतुर्भुज है, मुकुट पहने हुए हैं, सारे पीताम्बर वस्त्रधारी है, मतलब वो सारे भगवान है। इतना ही नहीं, उनकी आराधना हो रही है, कई सारे देवता भी आराधना कर रहे हैं, हर हर जो रूप है, जितने बालक थे उतने भगवान, पुनः भगवान उतने भगवान, नॉर्मल जो भगवान का जो रूप है उस रूप में हुए और उनकी आराधना हो रही है, और बछड़े भी भगवान का रूप धारण किए हैं। तो वह फिर द नेक्स्ट सीन में ब्रह्मा को भगवान ने ये दिखाया कि ये वो सारे अदृश्य हो गए, पहले थे बछड़े और बालक थे, बाद में बछड़े के बालक के भगवान हुए दूसरे दृश्य में, तीसरे दृश्य में वह कोई नहीं है, न तो हुआ अब बछड़े बने हुए भगवान नहीं है, बालक बने हुए जो भगवान उदृश्य में थे वो नहीं है, बस केवल कृष्ण है, इज बाय हिमसेल्फ। तो ब्रह्मा समझ गए, उनका उनको साधारण बालक समझते थे या कुछ ब्रह्मा का कुछ गर्व हुआ तो देखता उनकी मित्रों की चोरी करता हूँ, बछड़ों की चोरी करता, अब सारा इनका गोचारण लीला ठप हो जाएगी। ऐसा सोचा तो था लेकिन वैसा नहीं हुआ, भगवान की सारी गोचारण लीला चल रही है। तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया भगवान के चरणों में, उनके मित्रों की चोरी करके और उनके बछड़ों की चोरी करके। तो अपने वाहन पर जो बैठे थे वहाँ से नीचे उतरे, धड़ाम करके गिरे भगवान के चरणों में अपने मुगुटों के साथ। चार मुख है तो मूल्यवान ब्रह्मा के मुगुट के साथ भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं, बह ही रहे हैं। अपराध किया मैंने, अपराध किया, और क्षमा याचना मांग रहे हैं। और फिर उस वक्त स्तुति भी की है ब्रह्मा ने, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा ने की हुई स्तुति वृंदावन में श्री कृष्ण समक्ष है। और केवल कृष्ण ही है और ब्रह्मा है, और स्तुति बड़ी सुंदर स्तुति, अविस्मरणीय ऐसी स्तुति ब्रह्मा की है। वृंदावन में जब हम पुराने वाले हाईवे से जाते हैं, दिल्ली से मथुरा वृंदावन, फिर आगे आगरा का, तो वृंदावन मथुरा वृंदावन के पहले पहले हाईवे पर जहाँ वृंदावन का मोड़ आता है, उसके पहले कुछ 10-20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है। उस गांव का नाम है चौमुहा, चौ चार मुहा मुख वाला। तो उसी स्थान पर ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की, तो उस गांव का नाम ही चौमुहा हुआ। वैसे हम वृंदावन में कथा किए तो वज्रनाभ भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ को शांडिल्य ऋषि ने ये मार्गदर्शन किया और कहा कि वृंदावन के इतने सारे ग्राम है या गांव है, उन सब का नामकरण करो, वहाँ जो जो लीला संपन्न हुई वहाँ पर या उस क्षेत्र में वो नाम दे दो, उस क्षेत्र को, उस स्थान को, उस स्थली को, उस ग्राम को। तो ऐसे आपको सैकड़ों इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ नेम्स आपको मिलेंगे उस समय के। तो उसमें एक नाम है चौमुहा। तो उस ब्रह्मा ने की वह स्तुति के उपरांत वो तो लौट गए। ब्रह्मा वैसे लौट भी गए और भगवान के सारे मित्रों को और बछड़ों को भी लौट आए। और फिर अब एक साल के उपरांत सभी मित्र बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, यमुना के तट पर, बिल्कुल उसी स्थान पर जहाँ वरुत बैठे थे पहले, वही बैठे सुदामा श्रीदामा जहाँ बैठे थे उसी स्थान पर अब एक वर्ष के उपरांत बैठे हैं। सभी ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया, केवल वो जनरल एरिया ही नहीं, वही उसी एरिया में उसी स्थान पर जहाँ बैठे थे वही सब बैठे हैं। और फिर भगवान भगवान वहां आ जाते एक साल के उपरांत, और भगवान जब एक वर्ष पूर्व जब पता चला कि बछड़े नहीं है और उन्होंने कहा था कि मैं स्वयं खोजने जाता हूं, तो उनके हाथ में जो दही भात था कुछ पकड़े हुए थे, कुछ पिकल्स अचार इत्यादि, हाथ धो के नहीं गए थे, ऐसे बीच मिडल ऑफ द लंच के बीच में ऐसे उठ के गए, तो जो जो था उनके हाथ में उस दिन अब वही था, साल के उपरांत वही वही था, वही पकवान, वही वही खीर जो लगी अपने हाथ में पकड़ी हुई अंगुल उंगलियों के बीच में। और जब कन्हैया को लौटते हुए देखा तो सब गए आ गए, यू आर सो फास्ट ओ फ्रेंड, यू आर वंडरफुल कृष्ण, अभी अभी गए और लौट भी आ गए, सच ए नाइस थिंग, कितनी अच्छी बात है। तो वैसे इन मित्रों को ये ब्रह्मा ने चोरी की और उनको कहीं रखा गया था और एक साल की अवधि बीत चुकी है, इसका कोई ज्ञान नहीं था, कोई क्लू, कोई विचार नहीं था कि हमारी चोरी भी हुई थी और हम कृष्ण के साथ एक साल भर के लिए नहीं थे। तो उनको लगा कि अभी अभी गया था कि ना, और वैसे ही सब भोजन भी उन्हीं का उसी दिन के जो पकवान बनाए थे एक साल भर, वही उनके थाली में थे या टिफिन में थे, आधा लड्डू जो खाया था थाली में रखा था वही वैसा पड़ा है, पुनः आ गए तो वही है। वाह। तो फिर उस शाम को सभी लौट गए, बछड़े भी थे, बछड़े लौट गए और बालक भी लौट गए। तो जब अपने अपने घरों में वे लौटे बालक, तो सभी मित्रों ने जैसे हर रोज की ये परिपाटी, उस दिन की भगवान की कुछ विशेष लीला, किसी असुर के वध या संहार की कोई लीला, कोई अद्भुत लीला का सभी वर्णन करते हैं अपने अपने घरों में। ए मम्मी आ जाओ, सीधा डैडी क्यों आ जाओ ना, उन सबको बिठाते या भोजन के समय, ऐसा हुआ हो ऐसा हुआ ऐसा हुआ, वहां गए थे और ओ ऐसा पक्षी आ गया, और फिर भगवान खा गया हो बकासुर। तो इस रात्रि को सभी घरों में, क्योंकि हर घर का एक एक बालक या एक दो बालक जाया करते थे गोचारण लीला के लिए कृष्ण के साथ मित्रों के साथ, तो हर घर में इस प्रकार भगवान की लीला का प्रचार प्रसार, फ्रेश आज की ताजी खबर आकाशवाणी, तो हर घर में कोई अलग से कोई रेडियो या स्पीकर नहीं है, लेकिन सारे मित्र अपना आंखों देखा वर्णन, या कृष्ण के सौंदर्य का भी ये हुआ ये लीला हुई, आज ऐसे स्थान पर भोजन किया। तो उस रात्रि को उन सभी ने अपने अपने घरों में अपने अपने माता पिता इष्ट बंधु मित्र पड़ोसी जो भी वहाँ एकत्रित थे, तो उनको उन्होंने अघासुर वध की कहानी सुनाई। आघास हो। क्योंकि एक साल पहले अघासुर के वध के उपरांत अघासुर एक अघ मतलब सर्प, अघासुर बकासुर और पूतना, अघासुर और बकासुर ये दो भाई और उनकी बहन है पूतना। हाँ क्या परिवार देखो, हाँ कई क्या भाई कैसे बहन ऐसी। तो बकासुर तो पूतना को बकी भी कहते, बकी बकासुर की बहन इसीलिए बकी। जैसे यम की बहन यमी जो जमुना है, अब जानते हो कि नहीं, यमराज यमराज और जमुना भाई बहन है और दोनों भी सूर्य के सूर्य कन्या है। जमुना और सूर्य पुत्र है यमराज। तो वृंदावन में जहाँ वृंदावन में मथुरा में विश्राम घाट पर ये दो भाई बहनों का जमुना और यमराज यम और यमी कहते हैं। ऐसे नाम चलते बक बकी यम यमी, कृपी भी चलता है कृपाचार्य कृपी। क्या हुआ तो यघासुर बड़ा सर्प जो मुंह खोल के बैठा था, सभी ने सोचा है बहुत अच्छी प्रदर्शनी है, कोई डायरामा है कोई क्या है कोई गुफा है, चलो चलते हैं। तो सभी उसमें प्रवेश किए थे, राधा गोविंद देव की। और तो अंदर सभी ने प्रवेश किया था, फिर याघासुर कन्हैया की राह देख रहा था। तो कृष्ण जानते थे कि ये कोई अंदर हाईवे नहीं है, ये न तो गुफा है न तो ये कोई प्रदर्शनी है, इसमें सर्प का दर्शन यहाँ दिखाया है मुंह खोल के। वे जानते थे ये तो घास, आई नो मैं जानता हूँ, पहचान गया तुमको मैं। तो फिर जब भगवान ने भी प्रवेश किया तो उस अघासुर ने अपना मुख बंद कर दिया। अब सोचा कि अब सबकी हत्या, सबको मारेंगे एक साथ, ऐसा विचार था उस अघासुर का। न तो सांस ले पाएंगे, हवा ये सब एयर टाइट है या इज नो एयर। नहीं, फिर भगवान अपने कद को बढ़ाते गए और मुंह बंद करके रखने का प्रयास अघासुर का चल रहा था, लेकिन अंदर से भगवान वॉज बिकमिंग टॉलर, बड़े बड़े बनते जा रहे थे, उसका प्रयास चल रहा था कैसे बंद करके रखना है। तो वो फट गया और हो गया, वध भी हुआ, उसका कल्याण भी हुआ, उसकी उसने भगवान के ब्रह्म ज्योति में प्रवेश भी किया। भगवान कल्याण भी करते हैं। तो भी सारे मित्र बाहर आए थे, ओह ओह बदबू कहाँ से आ रही है, ओह सर्प के पेट में आके सारी, सर्प ने क्या 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 नहीं खाता, चूहे खाता ये खाता है वो खाता है तो सारा उसकी सारी दुर्गंध वहां से वो जा रहे थे। लेकिन वो बड़ा विशाल था वो हाईवे जैसा मार्ग, लेकिन तो जब इसका भगवान ने मुंह खोल दिया उसकी जान ले ली तो सारे बाहर आए, कृष्ण बाहर सब बाहर आ गए। थैंक यू कृष्ण, थैंक यू नहीं बचाया। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। कृष्ण अगर बचाना चाहते हैं तो फिर कौन मार सकता है ऐसा, लेकिन कृष्ण ही मारना चाहते हैं तो फिर कौन बचा सकता है ऐसा भी। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, ऐसा प्रश्न है। तो कृष्णा रक्षण करते हैं अपने भक्तों की, अपने मित्रों की। नमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं हो सकता। भक्त बन के तो देखो, नहीं तो पैसा लौटा देंगे आपको। कुछ लोग कहते हैं आप, हम आपका वजन कम कर देंगे, आपका वजन बढ़ा देंगे, वरना पैसे वापस। तो भगवान के भक्त बन के तो देखो। तो उस पूर्वान्न, पूर्वान्न मध्यान्न, मध्यान्न समझ, मध्यान्न, मध्यान्न के पहले पूर्वान्न होता है, फिर मध्यान्न के बाद अपरान्न होता है, प्री नून या बिफोर नून के, बिफोर नून देन आफ्टर नून, बिफोर नून, नून आफ्टर नून, तो बिफोर नून अपरान्न, नो आई एम सॉरी पूर्वान्न। तो पूर्वान्न काल में जो लीला संपन्न हुई थी, और बाद में भोजन के लिए बैठे थे ना, आपको बताया बाद में भोजन के लिए बैठे थे, और भोजन जब कर रहे थे तभी कृष्णा गए तो ब्रह्मा आए, चोरी हुई, तो वही स्मरण था उनको उस प्रातःकाल को, जो एक साल पहले जो प्रातःकाल में जो लीला हुई उस दिन जिस असुर का वध हुआ, अघासुर का वध हुआ था, तो वही लीला सबको सुनाई, सभी बालकों ने अपने अपने घरों में वही लीला सुनाई, और वैसे सुनाई मानो ये घटना उस दिन ही घटी है। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये सब लीला सुनाई, अघासुर का वध हुआ, और या अघासुर, या अघासुर का वध और फिर सभी, या उसका वर्णन एक साल के बाद उपरांत हुआ, तो उस दिन क्यों नहीं सुनाया, एक साल के बाद क्यों सुनाया। तो वैसे भगवान या सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म विमोहन लीला नहीं सुनाए थे, जंप्ड फ्रॉम, तो अघासुर का वध हुआ और फिर भोजन हुआ, और फिर मित्र जब घर लौटे तो हुआ वो सारा, लेकिन एक तो भगवान पौगंड अवस्था में थे, तो सुखदेव को राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, ये कैसे एक साल के उपरांत, एक साल के बाद कैसे हुआ। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ये सारी ब्रह्म विमोहन लीला को विस्तार से सुनाए हैं, सारा स्पष्टीकरण दिया, ये ब्रह्म विमोहन लीला सुना के जो बड़ी रोमांचकारी लीला भी है। सुखदेव गोस्वामी कुछ लीला कहने के लिए थोड़ा सावधानी से कहते या कहते ही नहीं, ये सोच के कि इस लीला का मैं स्मरण करूं, ये लीला कहूंगा तो मेरा फिर बाह्य ज्ञान नहीं होगा, मैं अंतर्मुख हो जाऊंगा, मेरा मैं स्तंभित हो जाऊंगा, स्तब्ध हो जाऊंगा। स्तब्ध मतलब न हिलता है, न तो डुलता है, न तो बोलता है, न तो देखता है, न स्तंभ जैसा, खंभे जैसा। एक एक भक्ति का एक विकार है, या भक्ति का भक्ति भाव का वो परिणाम है। ऐसा अगर बन जाऊंगा तो फिर सारी कथा ही ठप हो जाएगी। सुखदेव गोस्वामी को तो 7 दिन का शाप मिला है, 7 दिन के उपरांत वो सर पाएगा और डसेगा। लेकिन वो और भी कुछ दिन शेष है, शायद 4th दिन चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन जो 10वें स्कंद में है, तो 10वें स्कंद की बाल लीलाओं का वर्णन सुना रहे, तो कुछ 4th दिन 7 दिनों में से ये 9 स्कंदों की कथा हुई है, 10वें स्कंद में प्रवेश किए, तो 4th दिन तो और 3 दिन बाकी है। तो ऐसे कुछ विशेष लीला, कुछ गोपनीय लीला मैं कहूंगा तो मेरी स्थिति ऐसी हो सकती है, कथा को विराम हो सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी अपनी ओर से भी सावधानी बरतते, और ये भी कहा है कि वैसे जस्ट इन केस अगर ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं सुखदेव गोस्वामी, अपने भाव विभोर हो जाते हैं, बाह्य ज्ञान नहीं रहता, इसीलिए भी वैसे वो राधा का नाम उन्होंने नहीं लिया, अराधिको नूनम, ऐसा अप्रत्यक्ष उन्होंने राधा का संकेत किया है। ऐसे वर्णन से तो स्पष्ट ही है ये कौन हो सकता है, ये राधा ही हो सकती है, ये राधा। लेकिन राधा का नाम नहीं लिया उन्होंने श्रीमद् भागवत में, इसका अर्थ ये नहीं कि राधा व्यक्तित्व है नहीं, ऐसा ही कुछ जो भागवत के मर्म को नहीं जानते हैं, ऐसे कुछ तथा कथित विद्वान या पंडित कहे राधा थी ही नहीं, राधा है, इसीलिए राधा का नाम ही नहीं लिया, केवल कृष्ण ही है। एक महानुभाव पंथ, महाराष्ट्र में एक पंथ है, एक परंपरा है, वो केवल कृष्ण को मानते हैं, राधा नो, राधा राधा थी ही नहीं, राधा है ही नहीं, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। अगर होती तो सुखदेव गोस्वामी जरूर बखान, कुछ व्याख्यान, कुछ नाम लेते, लेकिन नाम नहीं लेने का कारण सुखदेव गोस्वामी वैसे राधा थी नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता है। सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही उनके इष्ट देव, इष्ट देवी तो राधा ही है। सुखदेव गोस्वामी कृष्ण से भी राधा को अधिक मानने वाले थे, इसलिए उनका नाम भी शुकेष्टा, शुक इष्टा, उसे राधा का नाम हो जाता है शुकेष्टा, सुखदेव गोस्वामी की इष्टा। इष्टदेव होते ना, इष्टदेव, ये फलाने इष्टदेव हमारे, वो फलाने इष्टदेव हमारे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के इष्ट नहीं, इष्टा थी, और राधा रानी इष्टा, तो शुकेष्टा, शुक महाराज की, सुखदेव गोस्वामी की इष्टा, आराध्या, आराध्या आराध्य आराध्या मूर्ति राधा रानी। तो भी जब कथा हो रही थी श्रीमद् भागवत कथा, तो वह कई सारे वाद्य लाके रखे थे, जिसमें कई सारे नगाड़े भी रखे थे और भी कई प्रकार के वाद्य, तो तारी कहते कई सारे वाद्य होते हैं, जिसका आके कथा में कुछ सुखदेव गोस्वामी कोई संगीतमय कथा, आजकल के जो कथाकार संगीतमय तो बीच में कई सारे वाद्य बजाते हैं, मुरली भी है, ये है वो है, कोई तो गिटार लेके बैठते हैं, बेस गिटार या बेस गिटार और कई सारे वाद्य, लेकिन वो जो वाद्य वहाँ स्पेयर रेडी रखे थे उसका उद्देश्य ये था कि अगर सुखदेव गोस्वामी किसी विशेष भाव किस लीला का स्मरण और भाव में फिर वो अंदर जाके छिप के बैठ गए, कथा बंद हुई तो क्या करेंगे हम लोग, नगाड़े बजाएंगे, बड़ा जोर जोर से नगाड़े बजा जाएंगे, ये वाद्य बजेगा वो वाद्य बजेगा, और फिर पुनः उनको उस स्तंभित स्थिति से या अंतर्मुख स्थिति से फिर पुनः उनको बाह्य ज्ञान, या तो ये कथा हो रही है, कथा आप वक्ता हो, श्रोता अब भी बैठे हैं, कृपया आगे बढ़ाइए कथा को, तो ऐसे कोई स्थिति आ जाती है तो उन्होंने वो सारे वाद्य तैयार रखे थे। तो यशमती नंदन तो यशोदा मैया के तो वे नंदन थे ही, भाग्यवान थी यशोदा, यशोदा च महाभागा, किंतु फिर भगवान ने ब्रज के सारे बुजुर्ग गोपियों को भी भाग्यवान भाग्यवती बनाया, उन सभी के पुत्र बने साक्षात स्वयं स्वयं भगवान पुत्र बने। भगवान जैसा, भगवान जैसा पुत्र हो तो भगवान जैसे और कौन है, भगवान जैसे तो भगवान ही है। तुझा सारखा तू च देवा, मराठी में तुझा सारखा तू च देवा, हे भगवंता आप जैसा तो, आप जैसे तो आप ही हो, आप जैसा और कोई नहीं है। वो चाहते थे भगवान जैसा पुत्र हमें मिले, तो भगवान ही बन गए उनके पुत्र। यशमती नंदन ब्रज वर नागर, तो ब्रज के वे वर है, गोकुल रंजन कान्हा कान्हा, तो गोकुल रंजन सारे गोकुल के का रंजन करते हैं, केवल मनोरंजन ही नहीं आत्मरंजन करते हैं भगवान, गोकुल रंजन गाना श्री राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन बल्लभ गिरी वरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, गोपी प्राण धन, गोपी गोपी प्राण धन, कृष्ण कैसे है, गोपी प्राण धन। तो अक्रूर जब कृष्ण को ले जा रहे थे, बलराम को भी रथ में बिठा के वृंदावन से जा रहे थे मथुरा की ओर, कंस का वध करने कृष्ण जा रहे थे, तो उस वक्त गोपियों ने अनुभव किया कि हमारे प्राणी जा रहे हैं, हमारे प्राण जा रहे हैं, मानो निष्प्राण हो गई। कृष्ण को देखती रही और वही रही, बहुत समय के लिए वही रही वो, जहां रथ ने प्रस्थान किया था उस स्थान पर ही रह गए, न हली न डुली, वो प्रतीक्षा कर रही थी। क्योंकि जाते जाते कृष्ण ने कहा था, गोपियों आया से, संस्कृत में कहा आया से, मतलब मैं लौटूंगा, जस्ट नाउ कमिंग। तो वो आशा लेके बैठी थी कि हमारे प्राण, अक्रूर तो हमारे प्राण ही ले गया। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर, मेरे प्राण है। जीवने मरणे आरगति नाही आरगति मोर, जीवन में मरण में और कोई गति नहीं, हम जीवित है तो कृष्ण के लिए जिएंगे, मरेंगे तो फिर कृष्ण को प्राप्त करेंगे। और मदन मनोहर, तो कृष्ण कैसे मदन मनोहर, मतलब मदन, एक मदन होता है, मदन एक देवता है, मदन नाम का, मदन बड़ा सुंदर, कंदर्प भी कहते, कंदर्प जो, वैसे ये मदन बाण लेके, पुष्प बाण लेके भ्रमण करते रहता है ये मदन, और फिर स्पेशली जो युवक है, युवक युवतियों के दिल में वो अपना बाण से घायल करता है उनको, उसी के साथ राधा गोविंद देव की वो मोहित हो जाते हैं व्यक्ति, या काम से त्रस्त या लिप्त हो जाते हैं, वो कामना उत्पन्न करता है ये मदन। लेकिन कृष्ण कैसे है, मदन मोहन है, ऐसे मदन को भी मोहित करते हैं कृष्ण, या मदन मनोहर, उस मदन के भी मन को हर लेते हैं। मनोहर भगवान का नाम है ना, मनोहर बड़ा प्रसिद्ध नाम है, मनोहर मनोहर मनोहर, मन हरते हैं भक्तों का भी मन हर सकते हैं, हरते हैं, लेकिन यह विशेष ये मदन का मन को हर लेते हैं। तो ऐसे कोई मदन आ गए नारद मुनि के पास और कहा कि हम आए हैं हमारे बाणों के साथ, आप पर अब हम प्रयोग करें आपके ऊपर, तो नारद मुनि ने प्रस्ताव रखा कि वैसे आपको क्या मिलेगा, कुछ मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, आपने मुझे परास्त किया, घायल किया, तो फिर आपका कुछ ज़्यादा कमाई तो नहीं, कुछ ज़्यादा नाम तो नहीं होगा। तो इस ब्रज में कन्हैया नाम का व्यक्ति था, कृष्ण कन्हैया। तो अपने बाण का अगर उनके ऊपर प्रयोग करोगे, उनको घायल करोगे, आए संसार भर में तुम्हारा नाम होगा। कृष्ण पर मदन ने अपना बाण चलाया ने, और कृष्ण को घायल किया अपने बाणों से। तो ये मदन फिर नारद मुनि ने पता भी दे दिया, ऐसे ऐसे फलाने स्थान पर आप पहुंच जाओ, वहाँ रास क्रीड़ा संपन्न होने वाली है और आप वहाँ जाके अपना निशाना लगा दो। तो पहुंच गया तो कृष्ण रास क्रीड़ा के मध्य में थे, तो दूर से कहीं छिप के अपना लक्ष्य बना रहा था कृष्ण को। लेकिन जैसे ही फिर कृष्ण को देख भी रहा था, इज कृष्ण, सौंदर्य को देख रहा था, लेकिन बाण छोड़ नहीं जा रहे थे, इतने में वहां गोपी आ जाती। ये गोपी ये कृष्ण है ना, तो ओके ओके आई मिस द टारगेट, दोबारा अपना एम लगा के लगता है कि छोड़ दू बाण को, इतने में पुनः आ गई गोपी। तो उसका हर प्रयास विफल होता जा रहा था। और ये भी हो रहा था कि भगवान का जो सौंदर्य है उसको देखना पड़ रहा था, सोचना पड़ रहा था कि ये कृष्ण है कि नहीं। हाँ ये नेती नेती, ये तो गोपी है, नेती ये तो गोपी है, ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण कृष्ण। लेकिन बाण चलाने के फिर गोपी आ जाती वहाँ। तो कृष्ण का सोचते सोचते स्मरण करते कर दर्शन करते 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 कृष्ण ने ही उस मदन को मोहित किया, मदन के चित्त को हर लिया और भगवान बन गए, प्रसिद्ध हो गए। मदन मोहन का नाम है, मदन मोहन, मदन मोहन। ऐसे लिए ब्रह्मा अपनी एक प्रार्थना में, और श्रीमद् भागवत में नहीं है, दूसरे ब्रह्म संहिता नामक कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कृष्णा कितने सुंदर है, कंदर्प कोटि 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 कंदर्प या मदन या कामदेव भी उनका नाम है, अनंग भी उनका नाम। यही तो है ये कामदेव जो शिव जी के पास गए थे उनको मोहित करने, अपना अपने शक्ति का अपने मोहित मोहन शक्ति ने सौंदर्य से शिव जी को घायल करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मदन मैदान में आया या सामने आया, तो शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल के राख बन गया, लेकिन उसका शरीर नहीं रहा, अंदर उनकी आत्मा का हो वो तो नहीं जली। तो तब से उस कामदेव का दूसरा नाम, दूसरा एक नाम हुआ अनंग, कहते अनंग, बिना अंग वाला। तो गायत्री मंत्र में भी उसको काम गायत्री कहते हैं, काम गायत्री। तो उसमें उसको अनंग कहा है। तो ये इस काम को भी मोहित करते हैं। तो हम भी ऐसे मदन मोहन की आराधना प्रार्थना करते हैं, तो फिर भगवान क्या करते हैं, मदन को अपनी ओर खींचते हैं, उसको वहां से भगाते हैं ताकि हम मदन से मोहित न हो और हम कृष्ण से प्रभावित हो, या फिर या कृष्ण का प्रेम हमें प्राप्त हो, काम के स्थान पर फिर प्रेम की स्थापना। ये सारा संसार काम से लिप्त है, कामकारतः, कर्मकार उस वाजा सब व्यस्त है करने में सर। तो जो भी कार्य करते हैं वो उनको प्रेरित कौन करता है? काम, काम से प्रेरित। हमारा हर व्यवहार इस संसार में बद्ध जीव जो है, उनका हर व्यवहार, हर चहल पहल, जो भी हरकत उनकी है, उसके पीछे काम की प्रेरणा, काम की वासना, काम से स्फूर्ति, काम काम कामकारतः। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, भगवान कहते हैं। लोग क्या करते हैं अधिकतर? यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र की जो विधि है, गीता भागवत की के विधि विधानों को ठुकराते हुए, उन नियमों का उल्लंघन करते हुए लोग काम कारतः और काम से प्रेरित होके, काम से वशीभूत होके, काम वश, फिर क्रोध वश, ये सब चलता ही है, लोभ वश, ये सारे चार्ज लेते हैं हमारे जीवन का, फिर हम बन जाते कामी बन जाते हैं, क्रोधी बन जाते हैं, हमारे परिचय लोभी बन जाते हैं, काम क्रोध लोभ, फिर मद मोह, मात्सर्य, मत्सर मत्सर, इतना मत्सर मात्सर्य, और लेकिन ये तो शत्रु है, लेकिन हम शत्रु के ही काम को ही गले लगाते हैं। I love you वगैरह कह गले लगा दे, I love you। तो कौन मित्र कौन शत्रु? दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि संभ्रमित, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, भगवान गीता में सुना है। काम की तृप्ति नहीं हुई, कामात क्रोधो भी जाए थे, क्रोध आ गया, क्रोधात भवति सम्मोह, हम अधिक मोहित हुए, और जब मोहित होते हैं तो स्मृति स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश, सद असद विवेक नहीं रहा, सद असत, सत असत, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं रही, और फिर उस अवस्था में जो भी किया हुआ कार्य पछताएंगे, अधिक बंधन में आएंगे, और कहा ही फिर बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाशात केवल नश्यति नहीं प्रणश्यति, या काम क्रोध लोभ वश, काम वश क्रोध वश लोभ वश किए हुए कार्य हमें पहुंचाते हैं, ये तो नरक के द्वार है भगवान, ये तो नरक के द्वार है। इसलिए हम मदन मोहन के पास पहुंचते हैं, मदन मोहन की आराधना करते हैं ताकि वो मदन को हटा दे हमारे, मदन जो विघ्न बनता है, ताकि हमारा हमारा संबंध भगवान के साथ सीधे संबंध स्थापित हो, भगवान के साथ संबंध ज्ञान, इसी को कहते संबंध ज्ञान। और संबंध के साथ फिर आगे अभिधेय प्रयोजन ये सब चलते रहते हैं। राधा गोविंद देव की जय। तो वह पर्दे कई बार खुल रहे हैं और बंद भी हो रहे हैं, पट राधा गोविंद देव के उनका विश्राम का समय भी हो रहा है। इसके पहले अब भगवान का नाइट ड्रेसिंग भी होगा। हाँ, ये हुआ है कि अच्छा, या नाइट ड्रेसिंग, ये शयन आरती, रात्रि का श्रृंगार, दो श्रृंगार होते हैं। हाँ, तो ओके, क्विकली आगे बढ़ते हैं इसको। तो अमल हरि नाम, तो कालिया दमन विधान, भगवान ने कालिया का दमन किया। भक्ति विनोद ठाकुर इस गीत में लिख रहे हैं, अमल हरि नाम अमीय विलासा, तो मैं मुझे मेरी अभिलाषा है कि मैं ऐसे भगवान का गुण गाऊं। लेकिन वो कैसा गुण हो, अमल हरि नाम, हरि नाम मैं गाऊं, कहूं, उच्चारण करूं, जप करूं, कीर्तन करूं उस, लेकिन कैसा हो, अमल हरि नाम, मल रहित, अपराध रहित मैं जप करना चाहता हूं, अपराध रहित मैं कीर्तन करना चाहता हूं। अमल हरि नाम अमीय विलास, विपिन पुरंदर। तो कृष्ण कैसे, विपिन पुरंदर, विपिन मतलब बन, पुरंदर पाके इंद्र है, बंसी वदन, भगवान बंसी वादन, बंसी वादन है, मुरली वादन है और वेणु, भगवान तीन प्रकार की फ्लूट्स बजाते हैं। फिर उसके नाम भी है, एक का नाम बंसी है, एक का नाम मुरली है, तीसरी का नाम है क्या बच गया, वेणु, वेणुम कन्वन वनंतम। तो कितनी लंबी फ्लूट है, उसमें कितने छिद्र है, कितनी संख्या में छिद्र है, और कौन से फ्लूट का इसके उपयोग भी अलग अलग है। गायों को बुलाने के लिए एक फ्लूट, और गोपियों को बुलाने के लिए दूसरी फ्लूट, तो जब घर लौट रहे हैं तो और फ्लूट, ऐसे अलग अलग प्रसंग के अनुसार भगवान अलग अलग फ्लूट। तो बंसी वादन, फ्लूट प्लेयर का सुवास, सुवासहा, और भगवान वस्त्र पहनते हैं, अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, बढ़िया ढंग से वस्त्र पहनाए जाते हैं, मेटिक्यूलसली ड्रेस्ड, प्रभुपाद लिखते हैं सुव्यवस्थित ऐसे, मानो अभी क्या होगा, कोई नट 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 जैसा उनको सजाते, श्रृंगार करते हैं, यशोदा करती है, कभी गोपिया भी करती है, तो एक्टर जैसे सारा मेकअप, सारा ड्रेस बढ़िया होने के बाद फिर शूटिंग होता है, कैमरा के समक्ष जाते हैं। तो बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कभी कभी यह फूल धारण करते हैं भगवान। वैजयंती च माला, वैजयंती माला पहने, और वेणु, वेणु रंध्रान अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, मुरली को भर देते हैं अमृत से, अधर अमृत से, और फिर उसको छिड़काते सारे दूर दूर तक वो अमृत, अधर अमृत मुरली में भर के फिर मुरली की नाद से सर्वत्र उसको फैलाते हैं। तो बंसी वादन और सुबास, ब्रजजन पालन, ब्रजजन ब्रजजनों का पालन पालक है, असुरकुल नाशन और असुरों का संहार करते हैं, वही बात है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। नंद गोधन रखवाला, नंद महाराज के गोधन के रखवाले हैं, गोविंद माधव उनके नाम है, गोविंद गोविंद नाम क्यों कल बताए थे, गोविंद क्यों कहते हैं, हर नाम एक मीनिंगफुल उसका अर्थपूर्ण नाम होते हैं। माधव, माधव माँ मतलब लक्ष्मी, धव मतलब पति, माधव मतलब लक्ष्मी पति, फिर राधा रानी भी लक्ष्मी है, माधव तो राधा माधव, महालक्ष्मी आदि लक्ष्मी तो राधा है, उनसे आगे हमारे लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी भी राधा का ही आगे विस्तार है। नवनीत तस्कर मतलब वो नवनीत, नवनीत माखन, तस्कर मतलब चोर है, माखन चोर है। सुंदर नंद गोपाला, सुंदर है नंद नंदन और वे गोपाल है। जमुना तट चर, जमुना के तट पर भी विचरण करते हैं। गोपी वसन हर, गोपियों का वस्त्र हरण किया उन्होंने कार्तिक मार्गशीर्ष महीने में, मार्गशीर्ष महीने के अंत में, वैसे पूरे मार्गशीर्ष महीने महीने भर के लिए गोपिया कात्यायनी की पूजा कर रही थी बंदा यजमुना के तट पर। नंद सुतम पति पति मैं गुरु, नंद को कुमार नंद सुत हमें पति रूप में मिले, ऐसी प्रार्थना कर रही थी उस कात्यायनी देवी को। पति मैं गुरु ते नमः, हमारा नमस्कार स्वीकार करो, हमारी आराधना स्वीकार करो, प्रसन्न हो जाओगी तो क्या करो करोगी, हमें वो नंद कुमार हमें पति रूप में मिले, ऐसी प्रार्थना रोज कर रही थी, एवरी डे एवरी मॉर्निंग वो जमुना में जाती नहाती और प्रार्थना करती। तो फिर वो थर्टीथ डे आ गया, तीसवें दिन फिर भगवान आ गए। गोपिया स्नान कर रही थी तो वस्त्र की चोरी करके ऊपर जाके बैठ गए। गोपी वसनहारा, गोपी वसनहारा, गोपी के वस्त्रों तो हुआ। वस्त्र के बिना केवल अपने पति के समक्ष ही स्त्री हो सकती है, वस्त्र के बिना। तो भगवान तुम तो चाहते थे मैं पति बनूं तो वस्त्र लेके ऊपर चोरी करके बैठ गए। आ जाओ, कम आउट कम आउट। तो ये बड़ी रहस्यमयी माधुर्य श्रृंगार लीलाएं हैं, इसके अंतर्गत ये गोपी वसानाहारा। ये वस्त्र तो लौटा भी दिए, गोपियां जा रही थी अपने अपने घर, कृष्ण गोचारण लीला खेलने लगे, लेकिन गोपियों ने सोचा है, उनका मन तो कृष्ण की ओर दौड़ रहा है, घर लौट रही लेकिन उनका मन तो कृष्ण की ओर दौड़ रहा है। तो फिर वो सोच रहे थे, पहले तो उसने हमारे वस्त्र की चोरी की, लौटा तो दिया, लेकिन अभी हमारे चित्त की चोरी करके वो चला गया, चित्त चोर, माखन चोर, वैसे कई प्रकार का चोर, अग्रगण्य एक अष्टक है, भक्तों ने रचना की है, कैसा ये चोर है, बांधा उखड़ाला याला बांधा उखड़ाला, चोर है, माखन की चोरी घर में ही की उन्होंने। रास रसिक कृपा मोह, तो रास रसिक है, रास के रसिक है, रास में रस लेते हैं, रसो वही सह, वैसे कृष्ण का परिचय है वेदों में, भगवान को रसो वही सह, वही भगवान रस के ही बने हैं, रस की मूर्ति है, रसराज श्री कृष्ण कहते हैं, रस के वो राजा है, अखिल रसामृत मूर्ति है। तो फिर ऐसे ये रसराज कृष्ण फिर रास क्रीड़ा खेलते हैं गोपियों के साथ, फिर ये रस का सिंधु और मंथन होता है, वो रस का सब दहरे तरंगे सागर उसमें गोते लगाते हैं, बस जब वो रास क्रीड़ा खेल रहे हैं, तो रास रसिक रास के रस और रास का संबंध है, कृपामय कृपामय है। श्री राधा बल्लभ, राधा के बल्लभ है, बल्लभ मतलब पति है, राधा बल्लभ। वृंदावन नटवर, वृंदावन के नट है, केवल नट ही नहीं नटवर है, नट नट मतलब एक्टर, और नटवर है द बेस्ट ऑफ ऑल द एक्टर्स, हर दृष्टि से। नाट्यम अभी गमनम अभी नाट्यम, जब चलते हैं तो भगवान की चाल मानो नृत्य जैसा है, बोलते हैं तो लगता है कोई गायन हो रहा है। भक्ति विनोद आश्रय, तो ऐसे श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, और फिर हमको भी प्रेरित कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर इस गीत की रचना करके, कि हम भी ऐसे ही कृष्ण को बारंबार प्रणाम भी है, मामेकम शरणम व्रज भी है, और उनका आश्रय ले हम। अभी कुछ ही दिन, अब दिन गिन रहे हो कि नहीं, आज एक तारीख है तो वो दिन दूर नहीं है, तो हम मन बना रहे हैं, हम कह रहे थे कल, हम लोग स्वयं को तैयार कर रहे हैं मन को, हृदय को, हमारे भावों को, ताकि भगवान जन्म ले, प्रकट हो, उस प्राकट्य से हम भी लाभान्वित हो, या हमारे मोर मन वृंदावन, जिसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे, वो आप वृंदावन में रहना पसंद करते हो, तो वैसे मेरा मन, मेरा हृदय ही वृंदावन है, तो प्रभु यहाँ रहिए, यहाँ विराजमान होइए, यहाँ प्रकट होइए। ओके, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, तो पुनः मिलेंगे। हरे कृष्ण।